मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 8 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं पहले कुछ आप सबको सूचनाएं दिया करता हूं। तो वे सूचनाएं इस तरह की हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो सैटरडे को आप सबको एज इट इज़ मिलेंगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि आप ऐसा ना सोचें कि संडे को अगर आपको प्रेस क्लिपिंग्स नहीं मिल रही हैं तो कुछ गलत हो रहा है या कोई गैप आ रहा है। नहीं, संडे के अखबारों में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स होती है तो वो हम लोग आपको मंडे को प्रोवाइड कर देते हैं। इसी के साथ ही साथ योजना के 2 आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल्स दिए जाते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और साप्ताहिक क्वेश्चन जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है वह आप सबको अभ्यास के लिए उपलब्ध कराया जाता है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं थोड़ी सी एक फिलोसफिकल किस्म के विषय पर बात करने जा रहा हूं। इसे आप अगर शीर्षक ही देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर कार्ल मार्क्स, यानी कि हमारे समाज में जो परिवर्तन होते हैं उस पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं, इस पर मैं बात करूंगा। क्यों इस पर मैं बात कर रहा हूं, इस पर आगे बात करूंगा, बेहतर होगा कि आइए पहले कुछ दूसरी महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने विधानसभा की अभी स्थिति के बारे में सुना। विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, गठबंधन के आधार पर चुनाव हुए थे, लेकिन अब वो दोनों पार्टियों में आपसी सहमति न बन पाने के कारण सरकार बनाने की स्थिति नहीं आ रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां पर खासकर 1-2 पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो पॉलिटी का हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। चूंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तब बहुत से संविधान के या यूं कह लीजिए कि जो नियम कानून होते हैं वो हमारे सामने आते हैं जो अदरवाइज पुस्तक बुक्स में हमें पढ़ने को नहीं मिलते, लेकिन सिविल सर्विस पता लगा कि इसी तरह के तथ्यों के बारे में पूछ लेता है। तो वो जो तथ्य है मित्रों अभी वर्तमान सिचुएशन में वो ये है कि यदि समझौता नहीं होता है तो क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ठीक यही स्थिति शिवसेना की है, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी बनाने की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी बनाने की स्थिति में नहीं है, कोई भी अपने आप में बनाने की स्थिति में नहीं है। समझौते नहीं हो पा रहे हैं, सहमतियां नहीं बन पा रही हैं, तो संवैधानिक स्थिति क्या होगी। कि देखिए, जो कल यानी कि 9 नवंबर को अभी जो विधानसभा अस्तित्व में है वो उसकी डेट खत्म हो रही है 9 नवंबर को, यानी कि कल। इसका मतलब यह हुआ कि कल तक किसी न किसी नए मुख्यमंत्री को शपथ ले लेनी चाहिए, और अगर नहीं समझौता हो पाता है और नए मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो क्या होगा। अब 2 स्थितियां हैं। आज का दिन पूरा है, अगर आप इसको आज 8 तारीख की डेट पर सुन रहे हैं तो अब राज्यपाल के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। राज्यपाल हो सकता है कि सबसे बड़ा दल जो अभी है जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो उसको कहें कि भाई आप सरकार बनाइए, तो आप शपथ लीजिए और 10-15 दिन के बाद जो भी वो समय देना चाहें आप विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, ये वो कह सकते हैं। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, तब वो दूसरे बड़े दल को आमंत्रित कर सकते हैं राज्यपाल। लेकिन अगर राज्यपाल को लगता है कि इन सबसे कोई बात नहीं बननी है तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब यह हुआ कि अब जो राज्य है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा कोई उपाय नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति चल रही है उसका आप यूं कह लीजिए कि एक संवैधानिक जो विधान हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है और इस पर आपको ध्यान भी देना चाहिए। न्यूज में आपने 2-3 और इंपॉर्टेंट खबरें सुनी हैं जो बहुत ही तथ्य के रूप में है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ईरान ने परमाणु समझौता किया था 2015 में, न्यूज में आपने सुना कि अब ये लग रहा है कि जो ईरान है उसने बकायदे परमाणु संवर्धन का काम शुरू कर दिया है, यानी यूं कह लीजिए सरल भाषा में कि उसने परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर के जो बहुत से विकसित देश हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि अगर ईरान भी परमाणु परीक्षण करने लगेगा, परमाणु बम हथियार उसके पास हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये तो विश्व शांति के लिए खतरा है ही। तो ये एक तथ्य है कि ईरान से जुड़ा हुआ है ईरान, मालूम होना चाहिए। न्यूज में आपने बुलबुल के बारे में भी सुना, ये जो बुलबुल है ये कोयल नहीं है जो मीठे गीत सुनाती हैं, ये बुलबुल हैं जो तूफान हैं जो खासकर बंगाल की खाड़ी में उठ करके और देखी कि उसका क्या असर होता है। तो आपको जो मालूम होना चाहिए वो ये है कि जो बुलबुल है वो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान है। अगर वो बंगाल की खाड़ी में उठता है तो अब आप अपने कॉमन सेंस से लगाइए, कॉमन सेंस लगाते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि इसका असर भारत के किन राज्यों पर पड़ेगा। मैं जानबूझ करके वो बात नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि माफी चाहूंगा कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप भारत के नक्शे को देखें, देखें कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, वहां तूफान उठा है, और वहां तूफान उठ करके अगर वो भारत को प्रभावित करेगा तो किन राज्यों में उसका प्रभाव पड़ेगा। ये होमवर्क है, आप खुद अपने लेवल पर करेंगे तो बेहतर होगा। अखबारों में आपने ये भी पढ़ा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाने वाले हैं। ब्रिक्स, इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब ब्रिक्स सम्मेलन हो जाएगा, फिर वहां जो कुछ चर्चाएं होंगी उसको आधार बना करके। बस मैं इतना संकेत करना चाहूंगा कि ये जो सम्मेलन है ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ब्रिक्स, और भारत इसका एक महत्वपूर्ण राष्ट्र भी है, तो इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा आया है, वो है मातृ मृत्यु दर पर। मातृ मृत्यु दर यानी कि 2016 में भारत में मातृ मृत्यु दर कितना हो गया है। तो अब ये 2016 में, मतलब अगर हम इसको दो भागों में बांट दें तो दक्षिण के राज्यों में मातृ मृत्यु दर है 72 से 77 तक, 72 to 77, क्योंकि दक्षिण के कई राज्य हैं इसलिए 72 to 77। और अगर हम दक्षिण के राज्यों को छोड़कर के शेष राज्यों को देखें तो वह है 90 to 93, 90 से लेकर के 93 तक। मतलब ये एक डेवलपमेंट है, क्योंकि 2011-12 में ये बहुत ज्यादा थी, 167 थी, तो अब उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफी, मतलब हम बेहतर स्थिति में हैं। जो मातृ मृत्यु दर है, इसके बारे में थोड़े से दो तीन तथ्य मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो यह है कि जब मातृ मृत्यु दर का हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 70 से 72 या 72 से 77, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 में नहीं है, ये 1000 में भी नहीं है, ये 10,000 में भी नहीं है, यह 1,00,000 में है। यानी कि जब 1,00,000 माताओं का प्रसव होता है तो उसमें से इतनी माताओं का निधन हो जाता है। लेकिन जो मैंने प्रसव की बात कही वह भी देखिए एग्जैक्ट नहीं है। मातृ मृत्यु दर का जो कैलकुलेशन होता है उसमें शामिल किया जाता है, जैसे ही कोई माता का गर्भ ठहरता है, यानी कि कोई भी माता जब गर्भवती होती, वहां से लेकर बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के 42 दिन बाद तक, यानी कि इस दौरान अगर किसी माता की मृत्यु हो रही है, गर्भ के ठहरने से लेकर के गर्भ से मुक्त होने के 42 दिन के बीच के दौरान अगर किसी माता की मृत्यु होती है तो उसे इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन यहां एक तथ्य आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी माता की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जा रही है तो उस मृत्यु को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो भारत के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि लगभग लगभग ये दूसरे राज्यों में अगर आप देखें तो 90-93 तक आ गया है। इसका औसत अगर आप निकालें तो हम लगभग 85 तक पहुंच गए हैं। वैसे अगर पूरी दुनिया का ग्लोबल इंडेक्स देखेंगे तो वो 38% है, 1,00,000 में 38, भारत अभी उसके दुगने से भी ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। डेवलप्ड कंट्री बहुत अच्छी स्थिति में है, जापान में तो केवल 5 है, आप सोच नहीं सकते। ब्रिटेन में ये 9 है, अमेरिका में 14 है, भारत का मैं आपको बता चुका हूं, चाइना में 27 है। मतलब चाइना भारत की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि चाइना से हम लोग की अक्सर तुलना होती रहती है, तो चाइना में ये 27 है। नेपाल में 258 है, और चूंकि एक बड़ा विचित्र सा आंकड़ा है मैं उसे भी बताना चाहूंगा कि नाइजीरिया में यह जो है ना 814 है। सोच के देखिए, 814, जो अफ्रीका का देश है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मातृ मृत्यु दर, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक एग्जामिनेशन में ये आपकी मदद करेगा। ये महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है, हमारे और भी जो हेल्थ केयर का जो एक इंडेक्स होता है उससे भी ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेडिकल केयर किस देश में कितनी है, किस तरीके की है, उसका भी जो इंडिकेशन है, उसकी क्वालिटी को बताने का जो एक आंकड़ा होता है वो मातृ मृत्यु दर होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दरअसल दैनिक भास्कर का आज एक एडिटोरियल कमेंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उसकी शुरुआत ही देखिए किस बात से की गई है कि कार्ल मार्क्स प्रतिपादित सिद्धांत है, सभी सामाजिक मूल्य, अंतर क्रियाएं, संस्थाएं और राज्य की संरचना तत्कालीन उत्पादन व्यवस्था से निर्धारित होती हैं। कृषि समाज में संयुक्त परिवार की संस्था, सामंतवाद में सामाजिक स्तरीकरण, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में राज्य की शक्ति में विस्तार और संयुक्त परिवारों का टूटना इस सिद्धांत की तस्दीक है। इसी को आधार बनाकर के मैं मुख्य विषय के बारे में जो भी थोड़ा सा वक्त बचा है आप लोगों से अपने विचार शेयर करने जा रहा हूं। मैं खासकर अपने क्लास के स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि आप याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत आपको बताए थे और उसमें मैंने केंद्र में अर्थव्यवस्था को रख करके बहुत विस्तार से पूरे एक घंटे तक हम लोगों ने बात की थी कि कैसे जिस देश की जैसी अर्थव्यवस्था होती है उसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर होता है वो उसी तरह का होता है, और ढेर सारे उदाहरण अलग अलग क्षेत्रों के देकर के मैंने समझाने की कोशिश की थी। देखिए इसमें कार्ल मार्क्स कहने जा रहे हैं, वो कहने जा रहे उत्पादन व्यवस्था। उत्पादन व्यवस्था का मतलब है अर्थव्यवस्था। जिस समय जिस तरह की उत्पादन व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उसी हिसाब से समाज बनता है, और जब उत्पादन व्यवस्था बदलती है तो समाज भी बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर कृषि व्यवस्था, और इसमें उन्होंने दिया है संयुक्त परिवार की संस्था। तो हम पहले की कृषि व्यवस्था पर जाएं तो अब कृषि व्यवस्था मूल उत्पादन का आधार है, तो अब परिवार को खेती करना है। उस समय कोई ट्रैक्टर जैसी चीजें होती नहीं थी कि मशीन से खेती कर सकते हैं, अब जमीन है और जमीन पर सब मिलकर के ही खेती कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको कृषि करना है तो आपको एक साथ रहना पड़ेगा, तभी तो आप मिलकर के खेती बाड़ी कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो उस समय की जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो बेसिकली क्यों थी, ऐसा नहीं कि लोगों में बड़ा आपस में प्रेम था, नहीं, वो उनकी आर्थिक अनिवार्यता थी। तो ये है उत्पादन व्यवस्था। इसके बाद फिर उन्होंने दिया सामंतवाद में सामाजिक स्तरीकरण, फिर सामंतवाद की व्यवस्था आ गई। सामंतवाद में हुआ क्या कि जैसे जमींदार हैं, ये हैं, वो अपना टैक्स वसूल कर रहे हैं, बस केवल टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो जो राजा हैं, जो सम्राट हैं, उन सबके प्रतिनिधि हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल अपना मस्त आराम से बैठे हुए हैं, टैक्स वसूल हो रहा है, श्रम कर नहीं रहे हैं, अपना लेजरली लाइफ जी रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे समय में समाज में स्तर बने, ये छोटा है, ये बड़ा है, सामंत जी सबसे बड़े हैं, इसके बाद इस जाति का व्यक्ति है, इस जाति का व्यक्ति है। तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण है, मैं कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, ये सामाजिक स्तरीकरण एक दूसरे स्तर पर भी होता है, जरूरी नहीं कि उसमें जाति ही हो। तो ये सामंतवादी व्यवस्था की देन है, ये एक अलग किस्म की उत्पादन व्यवस्था है। फिर इसमें दिया उन्होंने औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसके बाद उद्योग लग गए। अब जब उद्योग लग गए तो सीधी सी बात है कि अब आप नौकरी करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मजदूरी करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अब आप सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं है। तो अब आपका संयुक्त परिवार टूटना ही टूटना है, क्योंकि लोग नौकरी करने जाएंगे तो अब वो लोग चले गए, खेती में लगे हुए हैं वो लोग यहां रह गए, और अगर खेती भी करना है तो खेती का भी औद्योगिकीकरण हो गया है। पता लगा कि पहले 10 बैल जितने जमीन को जोतते थे, अब एक घंटे में एक ट्रैक्टर उतने को जोत देगा, तो मशीन आ गए। तो इस तरीके से जब औद्योगिकीकरण हुआ तो राज्य की शक्ति में विस्तार हुआ, क्योंकि राज्य को निगरानी करनी पड़ी इन सब की, नियम कानून बनाने पड़े, और फिर संयुक्त परिवार ऑटोमेटिक तरीके से टूट गए, क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था में आप संयुक्त परिवार को बचाकर नहीं रख सकते। तो दोस्तों इस आधार पर हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो उत्पादन व्यवस्था होती है, जिसको उन्होंने एक दूसरे शब्दों में कहा उत्पादक उत्पादन संबंध, उसी के आधार पर उस समय के समाज की संरचना बनती है। और जब इसमें परिवर्तन होता है, यानी कि उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है, तो समाज में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस सिद्धांत की चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि समाजशास्त्र एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके सिलेबस का, और ये खासकर आपके अंदर विश्लेषण करने की एक अद्भुत क्षमता पैदा करता है केवल यह सिद्धांत। तो जितना भी वक्त था मित्रों, थोड़ा सा उसकी चर्चा मैंने आप सबसे यहाँ की है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप ध्यान से समझें, और अगर मेरी बात यहाँ उस तरीके से समझ में नहीं आई हो, आपको पर्याप्त नहीं लग रही हो, तो आप बकायदे बुक्स से इसे समझें या किसी के सहयोग से समझें, लेकिन इस सिद्धांत को समझें जरूर, क्योंकि ये बहुत ही तार्किक है और बहुत ही वैज्ञानिक भी है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं सतीश मौर्य, मनोज भाथरा ओडिशा से, तुषार गुप्ता और सौरभ पटेल रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों अब इसी के साथ ही आप सबसे दो दिनों की इजाजत लेते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।